नमस्कार भारत, 10 नवंबर रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अयोध्या मामले में मुख्य मुस्लिम पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दायर नहीं करेगा पुनर्विचार याचिका।
मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का था और पक्षों का था, जो मुस्लिम पक्ष है कि जो भी फैसला माननीय न्यायालय देगा हम उसे मानेंगे, वो फैसला आ गया हम उसे मानेंगे।
जानेंगे क्या है अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अहम कानूनी पहलू।
जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला दे दिया और अब वो जब माइनॉरिटी के रिलीजन की बात होगी क्या कोर्ट उस पर कायम रहेगी, ये देखने की बात होगी।
राम मंदिर पर होने वाली राजनीति का अब क्या है भविष्य।
वोट मांगने की आदत थी, हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके उन लोगों को अब कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच ने फैसले में विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक बताया, साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग जगह देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में अयोध्या पर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए भी कहा। इस फैसले पर आई प्रतिक्रिया में संतोष और असंतोष दोनों देखने को मिला। हालांकि इस मामले में पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसले को चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनके बीच फोन पर हुई दूसरी बातचीत के ब्यौरे को मंगलवार तक जारी कर सकते हैं। एंड्रूज एयरफोर्स बेस पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी और उन्होंने खुद को अब तक का सबसे पारदर्शी राष्ट्रपति बताया।
Now they want to have a transcript of the other call, the second call. And I'm willing to provide that. We'll probably give it to you.
अब वो दूसरे फोन कॉल का ब्यौरा चाहते हैं और मैं उसे देना चाहता हूं और हम मंगलवार तक आपको भी वह दे सकते हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जैसा पारदर्शी राष्ट्रपति अभी तक कोई नहीं रहा है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वेल्टर स्टाइन मायर ने उम्मीद जताई है कि अमरीका स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए फिर से एक सम्मानजनक साझेदार के तौर पर लौटेगा। उन्होंने बर्लिन की दीवार गिराए जाने की 30वीं सालगिरह के मौके पर ये बातें कही। साथ ही अमरीका और पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को शीत युद्ध की रुकावट को खत्म करने में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। मुझे याद है कि रोनाल्ड रेगन ने यहाँ ब्रेंडनबर्ग गेट पर कहा था कि इस दीवार को गिरा दो। मुझे आज भी वो शब्द सुनाई देते हैं। प्रिय मेहमानों, हम अमेरिका को के बहुत बहुत आभारी हैं। अब भविष्य में मैं अमेरिका को राष्ट्रीय अहम के खिलाफ लोकतंत्र और स्वतंत्रता में एक साझेदार के तौर पर देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। ये थे जर्मनी के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत में चक्रवाती तूफान बुलबुल के चलते 2 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में एक शख्स कोलकाता और दूसरा ओडिशा से था। बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफान पश्चिम बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की ओर बढ़ रहा है। 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और अगले 12 घंटों में पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश पहुंचने पर तूफान थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। इराक की राजधानी बगदाद में 4 विरोध प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब सुरक्षा बल सरकार विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र रहने वाले सेंट्रल स्क्वायर के आसपास गलियों को खाली करा रहे थे। इसके अलावा बसरा और करबला में भी लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें पूरी राजनीतिक प्रणाली बदलने की मांग की जा रही है। वहीं इराक के प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी ने लोगों से हालात सामान्य बनाने की अपील की है और देश में सुधार करने व 280 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदारी तय करने का वादा किया है। अमरीका चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र ये सुनिश्चित करे कि दलाई लामा के बाद तिब्बत का आध्यात्मिक नेता चीन का चुना हुआ कोई उम्मीदवार न हो। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमरीकी राजदूत सैम ब्राउन बैक ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने दलाई लामा से उनके उत्तराधिकारी के संबंध में बात की है। साथ ही यह भरोसा दिलाया है कि अमरीका ये सुनिश्चित करेगा कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बती बौद्धों में से हो, न कि चीन से। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। मैं हूं आदर्श राठौर।
मस्जिद मंदिर का मामला तो आपने तय कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, हमेशा के लिए ये खत्म हो गया।
कोई मंदिर अगर बहुत पहले किया उसमें पूजा नहीं हो रही है तो क्या उसको तोड़ दिया जाएगा? ये सिस्टम नहीं होना चाहिए।
देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब सारे लोगों ने कह दिया जो होगा मानेंगे, तो वो मान लिया गया, बात खत्म हो गई, एक मसला तो ये हो गया। अब अगर किसी की राय ये है कि जो जमीन दी है वहाँ बना लेंगे, तो किसी की दी हुई जमीन में मस्जिद नहीं बनती। मस्जिद मुसलमानों को बनाना होगा, जहाँ जमीन खरीदेंगे वहाँ बनाएंगे।
जब हमने शुरू ही से ये कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम मानेंगे, हम मान लें, खत्म भाई बात। अब आपने इतने दिनों तक हंगामा किया, इतना सियासत खेला, कितने लोग मरे, कितने लोग बेवाएं, कितनी औरतें हुई, कितने बच्चे यतीम हैं, इसका क्या होगा?
जमीन किसी की अपनी तो होती नहीं निजी है, कोई लेके नहीं आता। बनारस में लक्ष्मी कुंड है, औरंगजेब ने दिया, जंगमबाड़ी मठ औरंगजेब का डिसीजन है, तो वो भी फिर गवर्नमेंट छीन लेगी। तो गवर्नमेंट तो जो भी चाहे ले ले, सरकार जिसकी वो जो चाहे ले ले।
फैसला जो दिया है उसमें जो है कई लोगों की राजनीति की दुकानें जो है बंद हो जाएंगी, आपसी भाईचारगी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी आम इंसान जो है भारत का आपस में जो है लड़ना झगड़ना नहीं चाहता है।
ये आवाजें थी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के बाशिंदों की, जो शनिवार को अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अयोध्या मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। जहां बाबरी मस्जिद के गुंबद थे वो जमीन अब हिंदू पक्ष को मिलेगी, साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन उपयुक्त जगह पर दी जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आम तौर पर संतोष जताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं, खास तौर पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने। हालांकि इस विवाद में मुख्य पक्षकार हैं मुस्लिमों के, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसने साफ तौर पर कहा है कि वो फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा। और जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से समीरात्मज मिश्र।
शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित विवाद का फैसला सुबह 11:30 बजे तक आ चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर शाम को करीब 7 बजे अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ फैसले पर खुशी जता चुके थे। शाम को उन्होंने मीडिया से बात की।
हम लोगों ने पहले भी इस बात को कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला देगा वह सभी पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोगों ने इसे स्वीकारा है, इसका स्वागत किया है। इस फैसले ने देश और दुनिया में एक बार फिर से भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत के लोकतंत्र की मजबूती का बहुत स्पष्ट संकेत दिया है। निश्चित ही यह फैसला बहुत कुछ संदेश दे रहा है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी के साथ बोर्ड के अन्य सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसले से कुछ असहमति जताई। दिल्ली में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलानी ने कहा कि वे लोग बोर्ड से मशविरे के बाद इस फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने का फैसला करेंगे।
जजमेंट में बहुत सी बातें हैं जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म और 1991 का वगैरह वगैरह जो बहुत सी बातें जो कारामद हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है, उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टी डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी जमीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंडे को ले ली। ये हिस्से हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि विदर टू फाइल ए रिव्यू।
बोर्ड के सदस्यों को इस बात पर आपत्ति थी कि विवादित जमीन पर उनके दावे को खारिज कर दिया गया और पूरा विवादित स्थल रामलला को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीसरे पक्ष निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया। जिलानी और पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग फैसले से भले असहमति जता रहे हों, लेकिन इस विवाद में मुस्लिम पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किसी तरह की पुनरीक्षण याचिका दायर करने से साफ इनकार कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
देखिए मैं बोर्ड के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि हमने हमारा पहले भी स्टैंड ये था, बल्कि सिर्फ हमारा नहीं बल्कि बहुत सी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का था और पक्षों का था, जो मुस्लिम पक्ष हैं कि जो भी फैसला माननीय शुदा न्यायालय देगा, हम उसको उसका उसे मानेंगे, वो फैसला आ गया हम उसे मानेंगे, हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि हम रिव्यू करें।
जफर फारूकी के अलावा लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली और बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी फैसले का स्वागत किया है, लेकिन दो दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को मानने की अपील कर रहे जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी ने फैसले पर मायूसी जताई है। उनका कहना है कि ये हमारी आशाओं के मुताबिक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान सबको धैर्य से सुना और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि ये फैसला सर्वसम्मति से आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर अयोध्या की जमीन को लेकर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। कल आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं, ये समझने के लिए BBC संवाददाता भूमिका राय ने कानून के जानकार फैजान मुस्तफा से बात की।
मुझे लगता है कि कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के साथ थोड़ी ज्यादती की है, क्योंकि वो शुरू से ये केस लड़ते रहे हैं और उनको वर्शिप कराने का भी राइट ना देना, कम से कम ये कहना चाहिए था कि वो वर्शिप करने का राइट और मैनेज करने का उनको रहेगा। देखिए, ऐसा है कि जो वर्शिपर को राइट दिया है कि वो वहाँ वर्शिप करें और टेम्पल बनाएं, वो तो ठीक है, वेलकम है, लेकिन कई बातें जो मुस्लिम पार्टी या सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा था उसको मान लिया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। जैसे सबसे बड़ी मेरे लिए टेक अवे ये है कि जो एक फॉल्स नरेटिव बनाई गई थी कि बाबर ने एक राम टेम्पल को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिद बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है कि टाइटल तय करने के लिए ASI की रिपोर्ट पे रिलाई किया जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात मान ली कि 1949 में जिस तरह से मूर्तियां रखी गई थी वो एक इलीगल एक्ट, और कोर्ट ने यह भी माना कि 92 में जो मॉस्क को ध्वस्त किया गया वो रूल ऑफ लॉ का और कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम पक्ष की बहुत सी बातें मान ली गई हैं, सिवाय इसके कि उनको कहा गया कि वो कोई पेपर नहीं दिखा पाए अपनी ओनरशिप का, या ये कहा गया कि वो पोजेशन साबित नहीं कर पाए। ये दोनों चीजें कंट्रोवर्शियल हैं कि एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में क्या कोई टाइटल का पेपर होना चाहिए या पोजेशन कैसे साबित होगा, क्योंकि जो सरकारी रिकॉर्ड है कोर्ट ने कह दिया उससे टाइटल साबित नहीं होता, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उससे कोर्ट ने कह दिया टाइटल साबित नहीं होता। तो इस पे जो लॉ के एक्सपर्ट हैं वो कोर्ट के जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं।
तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले में कुछ और बेहतरी की जा सकती थी?
ऐसा है, देखिए, कोर्ट ने जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला दे दिया, और अब वो जब माइनॉरिटीज के रिलीजन की बात होगी क्या कोर्ट उसको कायम रहेगी, ये देखने की बात होगी कि धर्म के मामले में कोर्ट नहीं बोलेगी। तो जो आर्टिकल 25 है धर्म की स्वतंत्रता का, मैं समझता हूँ उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। लेकिन ये केस धर्म की स्वतंत्रता का नहीं था, ये एक सिविल डिस्प्यूट एक प्रॉपर्टी का था। तो क्या प्रॉपर्टी के केस में किसी दूसरे के फेथ या बिलीफ के बेसिस पे फैसला होना चाहिए? ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है।
अभी एक फैसला और आना बाकी है, मस्जिद ढहाए जाने का मामला। क्या आपको लगता है कि वो फैसला जो है इस फैसले से प्रभावित होगा?
कोर्ट में गिराए जाने की बहुत आलोचना की है, लेकिन वो अभी मामला बहुत लोअर कोर्ट में है, मुझे नहीं लगता उसमें सजाएं होंगी, क्योंकि अभी लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारे लीगल सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। आमतौर से क्रिमिनल केस जो है वो जल्दी तय होता है और सिविल केस देर में तय होता है, मगर इस केस में 92 से लेके अब तक आप देखिए कि 27 ईयर्स हो गए, और जिन लोगों ने एक साजिश के तहत उस मस्जिद को गिराया उनको कोई सजा नहीं हुई।
आप सुन रहे थे कानूनविद फैजान मुस्तफा को। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बरसों पुराना ये विवाद भी अब समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक हलकों में भी लगभग सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। ये फैसला BJP के लिए भी खास रहा, जो अयोध्या विवाद के साथ शुरुआत से जुड़ी रही। राम मंदिर निर्माण BJP के लिए अहम राजनीतिक मुद्दा रहा है। अब शनिवार को अयोध्या विवाद पर आया फैसला क्या इसे लेकर होने वाली राजनीति पर भी असर डालेगा? और हां तो क्या, इसी पर सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
अयोध्या विवाद सिर्फ एक अदालती मसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों की राजनीति भी शामिल थी। अदालतों से मिलने वाली तारीखें चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ती जा रही थीं, और इसके साथ ही चुनावी मुद्दों और घोषणाओं में राम मंदिर का निर्माण अपनी अहमियत लगातार बनाए हुए था। तो अब इस फैसले के बाद क्या अयोध्या विवाद पर होने वाली राजनीति खत्म हो जाएगी? इस सवाल के जवाब में बीजेपी पर करीबी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि जनता ने इसे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर खुद ही खत्म कर दिया है।
देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो एक तरह से मतदाता ने ही खत्म कर दिया था। जब तक लोगों को लगा कि आस्था के सवाल पर, राम में भक्ति के सवाल पर, राम जन्म स्थान से लगाव के सवाल पर अभियान चलाया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है, लोग साथ जुड़े थे। जैसे ही लोगों को लगा कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है और जो लोग आंदोलन चला रहे हैं वो लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, लोग अलग हो गए।
राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से ही उत्तर प्रदेश और बाकी उत्तर भारत में बीजेपी का उभार शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी। राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही महज 5 साल में लोकसभा में बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर 85 तक पहुंच गईं, और आज वह लगातार दूसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना भाजपा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रहा है। वहीं अन्य पार्टियां भी इस मुद्दे पर वोट मांगने से पीछे नहीं रहीं। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर और मस्जिद के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी।
कि जिनकी दुकानें चल रही थीं वो तो अब बंद हो जाएंगी। एक दफा मंदिर बन जाएगा तो जिनको मंदिर के नाम पे पैसा चाहिए था वो बंद हो जाएगा पैसा मिलना। जो बात कर रहे थे मस्जिद की, उसमें भी कुछ ऐसा इस तरीके का एलिमेंट था जो उसका नाजायज फायदा उठाता था, तो उनकी भी दुकान बंद हो जाएगी। और जो वोट मांगने की आदत थी हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके, उन लोगों को अब कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा।
झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में क्या अब सत्तारूढ़ दल मंदिर निर्माण का वादा कर वोट हासिल कर पाएगा? क्या मतदाता इस मुद्दे पर अभी भी अपना वोट डालेंगे? इस सवाल पर प्रदीप सिंह कहते हैं कि भाजपा इस मुद्दे को भुनाएगी तो जरूर, क्योंकि उनके विपक्षी इस मुद्दे पर उन्हें अभी तक घेरते रहती थी।
राम मंदिर को लेकर उनके विपक्षी लगातार उनके विरोधी, राजनीतिक विरोधी सवाल उठाते रहे हैं। उन्हीं का जो नारा था उसी का इस्तेमाल करके, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ये जो आलोचना बीजेपी को पिछले 2-3 दशकों से सहनी पड़ रही थी उसका जवाब अब उनके पास आ गया।
ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब मोदी सरकार आर्थिक सुस्ती और बढ़ती बेरोजगारी से घिरी हुई है। उन्हें इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अब राम मंदिर निर्माण जैसा बड़ा मुद्दा मिल गया है। विश्लेषकों का कहना है कि इस हिसाब से देखें तो सरकार के लिए इस फैसले का इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं हो सकता था। मई 2019 में 303 सीटें जीतने और अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाने के बावजूद बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में अब देखना होगा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सहारे वह झारखंड और दिल्ली में कितनी कामयाबी हासिल कर पाती है। नवीन नेगी, बीबीसी दिल्ली।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी साथ हैं। कब काफी देर से वो दिल्ली से छपने वाले अखबारों को उलट पलट रही हैं, क्या खास है अखबारों में?
आदर्श जी, सभी अखबारों को जैसे मैंने देखा तो सभी में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खबर है। साथ ही देश भर के माहौल से जुड़ी चीजें भी बताई गई हैं, कहाँ पे कैसा माहौल रहा और किसने क्या कहा। अब हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस है जिसने इसके लिए शीर्षक दिया है टेम्पल गेट साइट मॉस्क्यू अप्लॉट, यानी मंदिर को निर्माण स्थल मिला और मस्जिद को जमीन। साथ ही अयोध्या से की यहाँ पे एक तस्वीर भी है हनुमान गढ़ी के बाहर की, जिसमें सड़क पर बैरिकेड लगे हुए हैं, सड़क सुनसान है, केवल एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है, जो एक तरह से वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उसको भी दिखाने की कोशिश इसके जरिए है
जी।
और अखबार ने इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और वह राम मंदिर बनाने के पक्ष में है।
मेरे पास हिंदुस्तान अखबार है, इसमें सबसे ऊपर जो है जो प्रस्तावित राम मंदिर का जो ढांचा है उसका एक उसको कह सकते हैं कि एक ग्राफ सा बनाया हुआ है, एक चित्र सा बनाया हुआ है, और साथ लिखा है कि बड़े बड़े अक्षरों में राम मंदिर का रास्ता साफ। और इसके साथ ही उन्होंने पूरी वही जानकारियां जो लगभग सब अखबारों में दी गई हैं।
इसी के ही अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको शीर्षक दिया है टेम्पल सेट इन स्टोन, पत्थर में स्थापित मंदिर। और इसलिए इन्होंने ये शीर्षक दिया है, साथ ही एक तस्वीर दी है जिसमें ईंटों से बनी एक दीवार है और ईंटों पर लिखा है श्री राम।
जी
जी। और अगर हम देखें टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे इस तरह दिया है राम मंदिर विद इन साइट, राम मंदिर उसी जगह पर। और एक साथ ही में खबर दी है कि संतुलन बनाने की कोशिश, ये सुप्रीम कोर्ट के जी आदेश को बताते हुए कि संतुलन बनाने की कोशिश, अयोध्या में ही मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। और नवभारत टाइम्स लिखता है मंदिर वहीं मस्जिद नहीं। इसके अलावा अखबारों ने सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ी हुई खबरें दी हैं, तस्वीरें दी हैं जिसमें दोनों धर्मों के लोग जो हैं गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। और जनसत्ता अखबार देखें तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान है और उन्होंने कहा है कि विधि सम्मत और अंतिम निर्णय हुआ, संघ विवाद का खात्मा चाहता था जो हो गया।
अमर उजाला मेरे सामने है, इसमें सबसे ऊपर तस्वीर है जहां पर रामलला विराजमान की तस्वीर लिखी है और लिखा है कि असली मालिक रामलला, मंदिर यहीं बनेगा। और साथ ही एक खास तरीके से इन्होंने लिखा है रामलला विराजमान, उसमें रामलला का राम और विराजमान में से राज जो है दोनों को एक रंग में किया हुआ है, लाल रंग में, जिससे कि ये पढ़ने में अगर रंग के हिसाब से पढ़ें तो ऊपर नीचे पढ़ने में आता है रामराज। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 105 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था और चुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी को मिली 105 सीटें, शिवसेना को 56। दोनों मिलकर आराम से सरकार बना सकती हैं, मगर मुख्यमंत्री पद को लेकर पैदा हुआ विवाद उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा गया है। मैंने बात की मुंबई में मौजूद बीबीसी मराठी के संवाददाता मयूरेश कन्नूर से और पूछा कि अब जब राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के पास तो बहुमत लायक नंबर है नहीं, फिर इस न्योते पर उसका रुख क्या है?
कल राज्यपाल ने शाम को देवेंद्र फडणवीस, जिनको विधिमंडल का नेता चुना है बीजेपी ने, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनसे ये पूछा है कि क्या आप सरकार बनाने के लिए उत्सुक हैं और क्या आपके पास उतनी संख्या है। यानी राज्यपाल ने न्योता दिया है बीजेपी को, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 105 एमएलए है उनके, तो उनको ये पूछा है। बीजेपी ने इससे पहले ही बहुत बार वो कह चुकी कि उनके पास नंबर नहीं है और वो सरकार बनाने का दावा पेश इसलिए नहीं कर रही है। लेकिन अब बीजेपी कब राज्यपाल को अपना उत्तर देगी ये पता नहीं है, शायद आज देगी या फिर कल देगी। और उसके बाद अगर बीजेपी ये कहती है फिर से राज्यपाल को जाकर आधिकारिक तौर पर कि वो सरकार नहीं बनाना पाते, तो दूसरे विकल्प राज्यपाल के पास ये है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी यानी शिवसेना, जिनके 57 विधायक हैं, तो क्या उनको वो पूछेगी। हालांकि ये राज्यपाल का अधिकार है कि वो कब सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को ये पूछे, क्या राज्यपाल ये जल्द पूछेंगे या फिर कोई देर बाद पूछेंगे, इसके ऊपर महाराष्ट्र की राजनीति अब पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो ये अब पेच है कि बीजेपी क्या जवाब देती है राज्यपाल को और फिर राज्यपाल वो जवाब के बाद क्या करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में बयानबाजी होती रही है चुनावों से पहले, चुनावों के बाद, लेकिन मामला कभी इतना लंबा नहीं खींचा जैसा कि इस बार खींच रहा है। महाराष्ट्र में मूड क्या है जब लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं?
अगर आप लोगों के मूड की बात करें तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों की एक्सप्रेस हो रहे हैं या फिर लोगों से बात कर रहे हैं इधर उधर, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि महायुति यानी बीजेपी और शिवसेना के कोएलिशन को लोगों ने जो है वो मैंडेट दिया था। तो ये बिल्कुल है कि थोड़ा मूड जो है वो शिवसेना और बीजेपी के ऊपर गुस्सा होने जैसा है, क्योंकि वो पूछते हैं कि क्यों ये सरकार नहीं बनाना चाहते। हालांकि ये पता नहीं चल रहा है कि गलती किसकी मान रहे हैं लोग, या बीजेपी की मान रहे हैं या फिर शिवसेना की मान रहे हैं, लेकिन आगे जाके अगर देखते हैं तो ये जो पेज बना हुआ है वो किस तरह सॉल्व होगा, इसके ऊपर लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है और इतने ऊपर गुस्सा नहीं गया है कि लोग ये सोचने के लिए तैयार हों कि अगर शायद दूसरे चुनाव सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिलहाल राज्यपाल क्या जो है वो स्टेप लेंगे, इसके ऊपर सबकी क्यूरियोसिटी जो है, नजरें जो है वो लगी हुई है।
महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल पर जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता मयूरेश कन्नूर। अब बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर की, जो कि कल जिसका उद्घाटन हो गया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद डेरा बाबा नानक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान स्थित करतारपुर स्थित, जो पाकिस्तान का करतारपुर है, वहां पर दरबार साहिब गुरुद्वारे से जुड़ गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ उद्घाटन किया और पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। तो इस कॉरिडोर के खुलने से जुड़ी और जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने बात की बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा से।
देखिए, आज यहाँ पे सुबह से ही काफी एक्टिविटी नजर आ रही थी। बहुत सारे लोग दूर दराज के क्षेत्रों से, यहाँ तक के विदेशों से भी यहाँ पे पहुंचे थे। इसके अलावा पंजाब से बहुत बहुत दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने एक भारत की ओर से इसका उद्घाटन किया, लेकिन लोगों में उत्साह बहुत था, लेकिन एक कंफ्यूजन थी लोगों में कि क्या वो सीधे करतारपुर साहब गुरुद्वारा जा सकते हैं, क्योंकि खासतौर पर सिखों की भावनाएं बहुत जुड़ी हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि शायद पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। खासतौर पर मैं देख रहा था कि जो गांव के लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, उनके दिमाग में ये था कि बस यहाँ पे आएंगे, यहाँ से बस मिलेगी और सीधे वो करतारपुर साहब जा सकते हैं। फिर उन्हें यहाँ बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आज केवल जो VVIPs हैं, जो नेता हैं और बहुत सारे लोग हैं वो जाने वाले हैं, और उसके बाद जब वो जाएंगे तो उसके बाद उनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। 500 के करीब, 500 से थोड़े से ज्यादा लोग जो है उनका एक जत्था यहाँ नरेंद्र मोदी ने रवाना किया।
आम लोग कब अब जा पाएंगे?
आम लोग जो है वो जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको पहले रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। उसके अलावा जो यहाँ की फीस है, $20 फी, वो जमा करानी होगी और उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो उनको पूरी करनी होगी, उसके बाद वो आम लोग भी जो है यहाँ डेरा बाबा नानक से होते हुए करतारपुर साहब जा सकते हैं, क्योंकि कॉरिडोर जो था जिसका दशकों से इंतजार था खासतौर पर सिखों को, वो अब खुल चुका है।
लेकिन अगर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, क्या उनके पास कोई विकल्प है इसका?
जी देखिए, अभी तक जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके मुताबिक जो भी यहाँ से जाना चाहेगा भारतीय श्रद्धालु, जो भी जाना चाहेगा करतारपुर साहब, उसका पासपोर्ट होना उसके पास जरूरी है। हालांकि एक बार इमरान खान ने ट्वीट जरूर किया था कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो सिखों के लिए वो वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है फिलहाल। तो अभी तक समझौते के मुताबिक ही पासपोर्ट होना जरूरी है और $20 की जो फी है वो भी देनी होगी, केवल आज के लिए और 12 तारीख के लिए, क्योंकि वो गुरपूर्व का दिन है। इन दो दिनों के लिए इन फॉर्मेलिटीज को जो है वो वेव किया गया है।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। दोहा में जारी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कल भारत की महिला निशानेबाज तेजस्विनी सावंत ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों का टिकट हासिल कर लिया। उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में पांचवें स्थान पर रहकर कोटा हासिल किया। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक चीन की शी मेंगयाओ, रजत पदक मंगोलिया की ओयन बातियन येसुगेन और कांस्य पदक जापान की शिओरी हिराता ने हासिल किया। तेजस्वनी से पहले चिंकी यादव ने भारत को निशानेबाजी में 11वां ओलंपिक कोटा दिलाया था, हालांकि वो कोई पदक पाने में नाकाम रही। उधर चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल वर्ग के सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन और केविन सुकामुल्जो की जोड़ी से 21-16, 22-20 से हारकर बाहर हो गई। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच आज नागपुर में तीसरा और निर्णायक 2020 मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले बांग्लादेश ने दिल्ली में भारत को 7 विकेट से हराया था, जबकि भारत ने राजकोट में खेले गए दूसरे मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की। दूसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला खूब बोला था और उन्होंने 6 छक्कों की मदद से शानदार 85 रन बनाए थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्ला, मुशफिकुर रहीम और मोहम्मद नईम के अलावा लिटन दास कुछ अच्छी पारियां खेलने में कामयाब रहे हैं। महमूदुल्ला की टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो आज भारत के खिलाफ जीती तो उसके लिए ये किसी कारनामे से कम नहीं होगा। अब देखना है कि बांग्लादेश मजबूत भारत को आज कितनी चुनौती दे पाता है।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। शाम 7:30 बजे दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।